नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
उसने मुझे भेजा है, मुझ पे है, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। गमगीनों को तसल्ली दूं, आजादी तसल्ली दूं, आजादी ऐलान करूं। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पे है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ मैं आप सब परिवार को जो इस समय वचन सुन रहे हैं, स्वागत करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि हमारा प्रभु यीशु एक महायाजक है जो हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महायाजक स्वर्ग में महामहिमन के दाहिनी ओर बैठा है और वह एक ऐसे तंबू या मंदिर में सेवा करता है जो हस्त निर्मित नहीं है, उसके स्वयं के द्वारा बनाया गया है। पृथ्वी के मंदिर में याजक स्वर्ग के मंदिर की नकल में सेवा कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने जंगल में मूसा से कहा था कि वह बताए गए नमूने पर ही मिलाप वाले तंबू की रचना करें। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके वचन में से सीख सकें। प्रभु जी, जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार और निराश हैं, चिंताओं में हैं, आप उन्हें भी छुएं, शांति दें, बीमारी से छुटकारा दें, आज के वचन के द्वारा उनसे भी बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु एक महायाजक है। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु की सेवा महान है क्योंकि एक अति उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। यह नई वाचा भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ही है और वह इस वाचा से पहले की वाचा को पुराना ठहराता है। इस पत्री का लेखक कहता है कि अब हमारे पास और उत्तम वाचा है जो प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। हम मसीही विश्वासी उसके सहभागी तो बनाए गए, परंतु ये और उत्तम प्रतिज्ञाएं इसराइल के लिए प्रभु राज में पूरी होंगी। मेरे मित्रों, पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं को पढ़कर आप इस तथ्य से नहीं चूक सकते हैं कि परमेश्वर इसराइल को स्वदेश लौटा लाएगा। मेरे विचार में आज का इसराइल देश परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूर्ति के निमित्त नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर इसकी भविष्यवाणी है। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। और तब हम आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह 31 अध्याय के 8 पद में वह कहता है, देखो मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी, उत्तर देश अर्थात रूस। आज यहूदियों को रूस से बाहर आने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु जिस दिन परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा उस दिन रूस से निकलकर इसराइल अपने देश को लौट आने में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय के 10 और 11 पद में यिर्मयाह कहता है, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इसराइलियों को तीतर बीतर किया था वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। आज स्वदेश वास करने वाले इसराइली परमेश्वर के उद्धार के कारण वहां नहीं हैं, वे परमेश्वर से दूर हैं। परंतु जब वह दिन आएगा तब इब्रानियों की पत्री के लेखक की बात पूरी होगी कि अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित उत्तम वाचा से परमेश्वर उन्हें बांधेगा। यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय के 31 से 33 पद में यर्मिया परमेश्वर का वचन सुनाता है। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, मैंने उन्हें पहले तो ठंडे पत्थर की तख्तियां पर लिखकर व्यवस्था दी थी जिसका वे पालन नहीं कर पाए, परंतु अब मैं उनके मांस के हृदय पर लिखूंगा। उसने अभी तक तो ऐसा नहीं किया है। हाल ही में मेरी कलीसिया से कुछ लोग इसराइल घूमने के लिए गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें वहां पर यहूदियों को फिरे हुए उन्होंने नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इसराइल को परमेश्वर की ओर मुड़ते हुए अर्थात उसकी ओर झुकते हुए नहीं देखा। उन्होंने गाइड से पूछा, आवश्यक है कि आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताते क्योंकि आप एक यहूदी हैं और आप वहीं रहते हैं जहां वह रहता था। वह संसार के पापों के लिए मर गया। मैं तो एक अभागा अन्य जाति हूं जो दूर देश से यहां पर इस पृथ्वी पर रहने के लिए आया हूं। उचित तो यह होता है कि आप मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताते, परंतु यहां मैं आपसे प्रभु यीशु की चर्चा कर रहा हूं। मेरे मित्र ने बताया कि वह व्यक्ति हंसने लगा। मेरे मित्रों, यहूदी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अपने देश में नहीं लौटे हैं, परंतु यर्मिया की भविष्यवाणी एक दिन अवश्य ही पूरी होगी। सुनिए वह क्या कहता है, यर्मिया की पुस्तक 31 अध्याय के 34 पद में, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़े कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। इब्रानियों की पत्री का लेखक यही कह रहा है, नई वाचा और अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। प्रभु यीशु इस अधिक उत्तम वाचा का मध्यस्थ है क्योंकि इसमें अधिक उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं। मेरे मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसके 7 पद को। लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, अर्थात पहली वाचा अपर्याप्त थी, इसलिए इस नई वाचा की आवश्यकता पड़ी। अब कोई कहे, क्या पुरानी वाचा गलत थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगला पद भी आप सुने, इब्रानियों 8 के 8 पद में, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वह उन पर दोष लगाकर कहता है। मेरे प्रियो, देखिए, वह यह नहीं कह रहा है उस पर दोष लगाकर। समस्या परमेश्वर की वाचा के साथ नहीं थी, परमेश्वर की व्यवस्था के साथ कोई भी त्रुटि नहीं है। जो कुछ भी दोष है वह हम में है। हम व्यवस्था पालन में सिद्ध नहीं हो सकते, हम उसकी अनिवार्यताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। मेरे प्रियो, हमने यिर्मयाह की भविष्यवाणी में यह अभी अभी पढ़ा है और आप अन्य भविष्यवक्ताओं में भी इस प्रतिज्ञा को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है, इसराइल ने पहली वाचा तोड़ दी क्योंकि वे उसकी अनिवार्यताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय के 10 पद में लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मेरे मित्रों, नई वाचा उनके हृदयों में लिखी जाएगी कि वे उसका पालन कर पाएं। यह वाचा पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई नहीं होगी। इब्रानियों के पत्री 8 अध्याय के 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। उस समय पापों की क्षमा पूर्ण होगी, क्षमा में कोई कमी न होगी। इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अतः मेरे मित्रों, हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है। परमेश्वर कहता है कि यह पुरानी वाचा है और अब उसने नई वाचा बांधी है। यह नई वाचा उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित की है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर ने नई वाचा इसलिए नहीं बांधी कि पुरानी वाचा में कोई कमी थी। मैं उन लोगों के लिए दुख मनाता हूं जो पुरानी वाचा में लौट गए हैं। वे विश्राम दिन और व्यवस्था की अंत की बातों को मानते हैं। ओह मेरे मित्रों, यदि वे ध्यान लगा करके उसे पढ़ें तो वे जान लेंगे कि उसका पालन करना संभव नहीं है, अर्थात वे चूक रहे हैं। हम सबको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, अतः हमें परमेश्वर के पास आना है और उसकी इस नई वाचा में उद्धारकर्ता के प्रावधानों को स्वीकार करना होगा। व्यवस्था मनुष्य में कुछ भी भलाई उत्पन्न करने में योग्य न थी। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि उसकी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, यह धर्मशास्त्र है और सही कहता है, मनुष्य पूर्ण रूपेण भ्रष्ट है। इसका अर्थ यह नहीं कि सड़क पर चलने वाला अन्य मनुष्य या पाप में जी रहा कोई मनुष्य, यह मैं और आप हैं। पवित्र आत्मा असंभव को संभव बनाने में योग्य है। पवित्र आत्मा निर्बल और पापी देह में पवित्र जीवन उत्पन्न कर सकता है। मेरे मित्रों, मैं एक अत्यधिक घरेलू उदाहरण आपको देता हूं। एक गृहिणी कुछ पकाती है क्योंकि उसे परिवार के लिए दिन का भोजन तैयार करना पड़ता है। अब फोन की घंटी बजती है। उसकी सहेली फोन पर कहती है, आपने कुछ सुना? वह कुर्सी पर बैठकर सुनने लगती है। उसकी सहेली की कहानी सुनते सुनते बहुत समय हो जाता है और इस गृहिणी को कुछ जलने की गंध आती है। वह तुरंत वार्तालाप समाप्त करके रसोई में भागती है। उसका चावल जल गया क्योंकि उसने उसे चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। अब वह चम्मच से उसे निकालना चाहती है परंतु वह कड़ा हो गया है, अतः वह पलटा लेकर उसे खुरचती है। यहां देखिए, चम्मच जो न कर पाया वह काम पलटे ने कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार व्यवस्था पूरा काम नहीं कर पा रही थी, अतः एक नई वाचा स्थापित की गई जो पवित्र आत्मा की है। व्यवस्था जो काम नहीं कर पाई वह काम पवित्र आत्मा कर सकता है। यही कारण है कि हमें उद्धार पाना है और मसीही जीवन जीना है जो इस सिद्धांत पर आधारित है। हमारी नई वाचा अधिक उत्तम प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा दिए हैं। हमारा मध्यस्थ स्वर्ग में है कि हमारी सहायता करे। यह धर्मशास्त्र का एक अति महान अंश है। यदि आप दूध पीने से आगे बढ़कर ठोस आहार खाना चाहते हैं तो आपको जीवित प्रभु यीशु, उसके स्वर्गरोहण और स्वर्ग में उपस्थित होकर आपके और मेरे लिए मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेरे मित्रों, जब हम जीवित प्रभु यीशु को थाम लेते हैं तो हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हम उससे अधिक ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते, इस वर्तमान युग में तो कभी नहीं, परंतु यह निश्चय है कि हम प्रभु यीशु तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि नई वाचा की हमें आवश्यकता थी, क्योंकि पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि उसमें व्यवस्था था। व्यवस्था, इसराइली लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, और यह हम सब के लिए भी बहुत कठिन है कि हम व्यवस्था की बातों का पालन कर पाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उस नई वाचा पर ध्यान दें, और यही कारण है कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर होकर भी इस पृथ्वी पर आया और उसने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, ताकि हम उस नई वाचा में अर्थात प्रभु यीशु में हो करके उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज जब हम संसार की ओर दृष्टि करके देखते हैं, चारों तरफ लोग परमेश्वर की खोज में हैं और उनके जीवन में जो कुछ हो सकता है वे करते हैं ताकि वे परमेश्वर को पा जाएं। परंतु हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम अपनी खोज के द्वारा उसे नहीं पा सकते हैं, और यही कारण है कि परमेश्वर होकर के भी यीशु इस पृथ्वी पर आया ताकि हम उसे देखें, उसे जानें कि वह परमेश्वर है, और अंततः उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे दंड को भी उसने ले लिया और क्रूस पर मर गया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। वह मरा ही नहीं परंतु मृतकों में से वह जी उठा और आज भी वह जीवित है। मेरे मित्रों, इस संसार में बहुत सारे प्रभु के नाम से लोग आए और उन्होंने बहुत सारे नाम भी कमाए, परंतु वे मर गए और कोई भी जीवित नहीं रहा। परंतु हम धन्य हैं कि प्रभु यीशु भी इस पृथ्वी पर आए और हमारे मध्य में डेरा किया। हमारे साथ साथ रह करके उन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य किस प्रकार जिए, और अंततः हम पाते हैं कि उसने हमारे बदले में प्राण को दे दिया। मेरे प्रियो, आइए आज हम उस महान परमेश्वर के पास आएं जो मरकर जी उठा है, और आज वह सक्षम है कि हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, और यही कारण है कि वह नई वाचा हमें देता है जिसके द्वारा हम उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपके जीवन के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आज आप उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आज आपके पास मौका है कि आप अवश्य ही उसे जानें, उसके बारे में पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि वह आपसे कितना प्यार करता है, आपकी कितनी चिंता करता है, वह आपको छुटकारा और चंगाई देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि वह आपके पास आपको मदद करे? यदि हाँ तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमारे लिए एक नई वाचा को तैयार किया है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय जो हमारे श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनकर आपके बारे में जानना चाहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं, आपकी महानता को समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय को, विचारों को खोल दीजिए ताकि उनके जीवन में आपका प्रेम गहराई से उतरने पाए, वे समझ सकें कि आपने उनके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है और इतना ही नहीं आप उनके बदले में मर गए हैं, आपने उनकी सजा ले ली है ताकि वे बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहन पर कृपा दृष्टि करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों पर ध्यान देते हैं, आप उनकी वेदनाओं को समझते और देखते हैं, आप उनकी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अपने पवित्र लहू से
तुझे